blessed Savior. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayaryanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Siddhadadhatamala. Visuddha Buddhi Elatha Savatha. Tihuvana Sirase Haraya. Pasiyantu bhadaraya sauve tihuvana bhavana pasariya pachakhava boha kirana parivedo uyo viyanathavano arahanta divayaro jayahu tirayana khagani haye nuttariya moha senna sirani vaho Airiya Rau Pasivau Parivaliya Bhaviya Jiyalo Annanandayare Anora Pare Bhamanta Bhaviyanam Ujjo Jehikao Pasiyantu Saya Uvachhaya Duhativati Savinadiya Tihuvana Bhaviyana Sutturayena Parithaviyadham pava suvajalavana payanena sandhariya silahara uttariya chirapamada dussilabhara sahu jayantu sauve sivasuha pahasantiya hunigaliya bhaya.
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड है, उसमें कृति अनुयोग द्वार की बात चल रही है। उसमें हम पृष्ठ संख्या 27 पर आ गए हैं, 27। प्रथम सूत्र नमो जिनानम और दूसरा नमो ओहि जिनानम, उसमें अवधि ज्ञानियों की बात चल रही है। देखो, यहाँ मुनियों को भी जिन कहा है, एक देश जिन की अपेक्षा। तो ये अवधि ज्ञान की बात हम देख रहे थे, तो उसमें जघन्य अवधि ज्ञान की बात हो रही थी। जघन्य अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की प्ररूपणा कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जो रूपी पदार्थों को जानता है वो प्रत्यक्ष जानता है, वो अवधि ज्ञान है। क्योंकि रूपी पदार्थों को हम इंद्रियों द्वारा भी जानते हैं ना, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान की बात है, इसमें कोई इंद्रियों का निमित्त नहीं बनता है। उसमें द्रव्य और क्षेत्र की बात हो गई है, अब काल की बात हो रही थी। तो उसमें हमने देखा था ये जो 19 अलग अलग कांडक है ना, उसकी भी बात कल आई थी। अब यहाँ हम कहते देखते हैं, यहाँ पर 27 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी शंका। हाँ, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में तीसरे कांडक के प्रमाण में, हाँ, अंगुलम आवलियं तो आवलियम चांगुल पुधत्तम, चांगुल पुधत्तम आवलिया अंगुल पुहुत्तम। हाँ, तो उसका अर्थ पूर्ण आवली किया है, गाथा तो वही की वही है कि उसी से उद्धृत किए हैं। अंगुल पुधत्त ने अंगुल पृथक्त्व, और यहाँ पूर्ण आवली प्रमाण लिखा है। अभी जो कुछ यथायोग्य है, पूर्ण आवली यहाँ लेंगे, आगे पृथक्त्व आवली लेंगे, या पृथक्त्व आवली में भी यहाँ कम लेंगे संख्या 3 और वहाँ 9 लेंगे, या पृथक्त्व शब्द संख्यात के लिए भी आता है कहीं कहीं, तो जो ओरिजिनल है वो लखना पूर्ण आवली है वो भी, परंतु पृथक तो भी हाँ, क्योंकि उन्होंने भी गोमटसार जीव कांड का ही उदाहरण दिया है। अभी हम 27 पृष्ठ पर आते हैं। अभी हमने द्रव्य से जगन्य उदी ज्ञान का विषय द्रव्य की अपेक्षा देखा था ना, तो उसमें छोटे में छोटे कौन से स्कंद को जानता है वहां की बात, जो छोटे को जानता है वो तो उससे बड़े को जानेगा ही, तो द्रव्य में कम से कम कहाँ तक जानता है उसको लेते हैं, क्षेत्र काल में अधिक से अधिक कहाँ तक जानता है उसको लेते हैं। तो द्रव्य में हमने देखा था विसरसोपचय सहित वाला कर्मण वर्गणा है, उससे रहित करना, ऐसे जो औदारिक शरीर की वर्गणा है उसमें उसका विसरसोपचय मिला देना, दूसरी भाषा में विसरसोपचय सहित जो औदारिक शरीर के परमाणु है संचित, उसका संचय देखना, उसको घनलोक से भाग देंगे तो जो संख्या आएगी उतने परमाणुओं का जो स्कंद है वहां तक जघन्य अवधि ज्ञान जानता है, उससे छोटे वाले स्कंदों को नहीं जानता। ये द्रव्य की अपेक्षा बात हुई। क्षेत्र की अपेक्षा बात हमने देखी थी, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव की जो जघन्य अवगाहना है, जघन्य अवगाहना भी कब होती है मालूम है आपको? हाँ, तीसरे समय में देखो वो कौन सा रुजुगति से इसने जन्म लिया है, रुजुगति से भी हम देखते हैं ना बार बार, यानी कोई जीव लगातार अपर्याप्त 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 होता रहे तो एकेंद्रियों के जो 11 भेद है, सूक्ष्म के 5 बादर के 5 वनस्पति में 2 प्रकार लेना, तो इस तरह से उसमें हमने देखा था हर एक प्रकार के जीव लगातार यदि अपर्याप्त हो गए तो 6012 बार होते हैं। तो लगातार जो ये रुजुगति से जन्म लेने वाला ऐसा जो है वो उस पर्याय के तीसरे समय में उसकी अवगाहना जघन्य होती है। हाँ, तीसरे समय में, ये पहले बात आई थी अपनी। तो ये अपने को यहाँ इतना ही लेना है, कम से कम जिसके जो कोई साइज है उतना उसका क्षेत्र का प्रमाण है। काल कितना है जघन्य काल याद है ना, अवली का असंख्यात्वा भाग, ये जघन्य काल है। अब भाव की बात कल हमने पढ़ी थी, फिर दोबारा पढ़ते हैं। देखो
एक मिनट, यहाँ 542 जीव कांड निकालिए, 542 पृष्ठ। वहाँ जो टीका है शुरू से, वहाँ नीचे से दूसरी लाइन में क्या लिखा है देखें, बहुरी तीसरा कांडक विषय क्षेत्र पृथक्त्व घनांगुल प्रमाण है और काल पृथक्त्व अवली प्रमाण है,
इसीलिए उनको शंका है।
तो नहीं नहीं, दोनों में से कौन सा सही है ऐसा हम उनको पूछना था।
हाँ, मगर यहाँ तो पूर्ण आवली लिखा,
यहाँ जो बात है वह तो पृथक्त्व आवली प्रमाण लिखा है, अब वहाँ पूर्ण उन्होंने ट्रांसलेशन
हाँ,
किया।
ठीक है, अभी जो है अभी समझ लेना उसमें। देखो पुदत्त तो गाथा में, मूल गाथा में पुदत्त शब्द आया है। अभी 25 पेज पर जहाँ आवली पुदत्त लिखा है वहाँ आवली पृथक्त्व ऐसा ट्रांसलेशन किया। हाँ, चतुर्थ कांडक में पुदत्त का अर्थ ही पृथक्त्व होता है। तो यहाँ जो 5 नंबर की जो है गाथा, अंगुल पुदत्तम कहा है, उसका अर्थ पृथक्त्व अंगुल, ट्रांसलेशन से तो पृथक्त्व अंगुल होना चाहिए। अभी यहाँ अंगुल पूर्ण अंगुल लिखा है, सॉरी अंगुल, ओहो एक मिनट, मैं फिर पढ़ दें, अंगुलम आवलियाय भागम असंखेज दोवि संखेजा अंगुलम आवलियंतो, आवलियंतो वो नहीं है पहले वाला, कुछ कम आवली प्रमाण वो हो गया। अब अंत में आवलियम च अंगुल पुदत्तम, अच्छा आवली लिखा है, आवली पुदत्त नहीं लिखा, पूर्ण आवली प्रमाण है, बराबर है, आवली लिखा है ना वहाँ, आवली पृथक्त्व नहीं लिखा है, आवली सॉरी आवलियम लिखा है। एक मिनट, अपना यहाँ हमने जो 541 पेज पर 404 जो है आवलियम च अंगुल पुदत्तम, शब्दावली कहाँ किया है? आवली यहाँ किया उन्होंने, यानी अनेक आवली लिया है। ठीक है, अभी पूर्ण आवली और दो आवली और बढ़ेगी इसमें। पूर्ण आवली अब जो है यहाँ पर लिख रखना। देशावधि में होगा, अवधि में है। देखो अभी हम वो देख रहे हैं ना पुस्तक में, तब तक हमने कल का जो पैराग्राफ पढ़ा था उसको दोबारा पढ़ते हैं। अभी अवधि ज्ञान के विषयभूत भाव की प्ररूपणा चलेगी। हमने द्रव्य, क्षेत्र और काल की प्ररूपणा देखी है, अब भाव की प्ररूपणा देख रहे हैं। वह इस प्रकार है, अपना जो जाना हुआ द्रव्य है, जिस द्रव्य को वो जान रहे, अभी कौन से द्रव्य की बात है यहाँ पर, कौन से द्रव्य को जान रहे हैं? पुद्गल द्रव्य को। उसमें भी जो कुछ उसकी मर्यादाएं हैं, कितने स्कंद को क्या, तो जो जाने हुए द्रव्य की बात चल रही, उसकी अनंत वर्तमान पर्यायों में से जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा विषयीकृत जघन्य अवधि ज्ञान जिसको विषय करता है। देखो द्रव्य में अनंत गुण है, तो उसकी प्रत्येक की वर्तमान में एक एक पर्याय हो रही है, तो द्रव्य में वर्तमान में अनंत पर्याय है, बराबर। तो उसमें जघन्य अवधि ज्ञान किसको विषय कर रहा है? तो कहते हैं आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पर्याय उसका जघन्य भाव है, यानी उतनों को जानता है। आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पर्याय उनको जानता है। भाव यानी पर्याय, कितनी पर्यायों को जानता है। भाव में पर्याय लिया यहाँ। देखो यहाँ जहाँ अवधि ज्ञान का देशावधि की क्रमिक वृद्धि के जो 19 कांडक है, उसमें हमारे तीसरे कांडक की बात हो रही थी, उसमें उन्होंने धवला 13वें पुस्तक का रेफरेंस दिया है। तो उसमें घनांगुल किंचित उन आवली, वो तो तीसरा है, और चौथा में घनांगुल पृथक्त्व और आवली यानी पूर्ण आवली। तो जहाँ पूर्ण आवली जो लिखा है वो वही ठीक है, क्योंकि धवला की उन्होंने फिर वहाँ रेफरेंस दिया है। तीसरे में नहीं, चौथे की बात है, चौथे कांडक में लिखा है। एक मिनट, अंगुलम आवली भागम असंख्य जे दो भी संख्य जा। अच्छा, उत्कृष्ट और जगह ने बताया तीसरे कांडक में, तृतीय कांडक में, और ये यहाँ चतुर्थ कांडक में लिखा है। यहाँ चौथा कांडक लिखा है उसके लिए उन्होंने। किंचित उन आवली वो तृतीय कांडक लिखा है। यहाँ जो है ना दो भी संख्य प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल, मैं फिर पढ़ती हूँ 24 पेज पर पांचवी गाथा का अर्थ। 19 कांडकों में से प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यातवे भाग और जघन्य काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल के संख्यात्व भाग और उत्कृष्ट काल आवली के संख्यात्व भाग है। इसको उन्होंने दूसरा कांडक बना दिया वहाँ जैन सिद्धांत कोश में, उसको 2 नंबर दिया है। अब द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल और काल कुछ कम आवली, बराबर ना, ये जो हम पढ़ रहे, और तृतीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल पृथक्त्व और काल पूर्ण आवली, वो पूर्ण आवली ही रखना वहाँ पर। पृथक हमने किया था ना वो, क्योंकि हमने इसके अपेक्षा लिया था अपने वो उसको तीसरा ही कांडक कहना है, क्योंकि पहले दो जो फिगर्स बताए थे वो जघन्य और उत्कृष्ट उन्होंने क्षेत्र बताए थे। हाँ, अभी बढ़ेंगे, अभी आगे हम, अब यहाँ भाव की बात हो रही है। हाँ, वहाँ उसको पूर्णावली लिखना था, उसमें क्वेरी करके पूर्ण करके रखना। हाँ, उसको पूर्ण करो, क्योंकि आवलिया लिखा है ना, आवलिया वहाँ अनेक वचन है, आवलिया लिखा है, इसलिए उसका ट्रांसलेशन भी पृथक्त्व कर दिया उन्होंने, एक से अधिक है ना इसलिए। और यहाँ आवली यह लिखा, इसलिए वो डिफरेंस पड़ा है ट्रांसलेशन में। देखो, इसको मैं फिर पढ़ती हूँ भाव की बात। अपना जो जाना हुआ द्रव्य है, उसकी अनंत वर्तमान पर्यायों में से जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा विषयीकृत आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पर्याय जघन्य भाव है। सभी अनंत पर्यायों को वो नहीं जानते, कुछ कुछ पर्यायों को जानेगा। कितने ही आचार्य जघन्य द्रव्य के ऊपर स्थित रूप रस गंध एवं स्पर्श आदि रूप सब पर्यायों को उक्त अवधि ज्ञान जानता है ऐसा कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि वे अनंत है। और उत्कृष्ट भी अवधि ज्ञान अनंत संख्या के जानने में समर्थ नहीं है। अनंत संख्या को जानने में समर्थ केवल ज्ञानी है, वो उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। और असंख्यात को प्रत्यक्ष जानने वाले ये अवधि ज्ञानी होंगे। केवल ज्ञानी तो सभी को जानेंगे, उसके ना नहीं है। केवल ज्ञानी तो संख्यात असंख्यात सबको जानेंगे ना, वो अनंत उनके ज्ञान का विषय है। हम जो जानते हैं तो हम श्रुत ज्ञान के द्वारा, यानी जो केवली ने बताया है उसको हम जान रहे, हम नहीं जान रहे वो बात नहीं है। परंतु ये हम अवधि ज्ञान का कैसे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय असंख्यात हो सकता है? उनका संख्यात तो होगा, जो असंख्यात को जानता है वो संख्यात को तो जानेंगे ही जानेंगे, परंतु अनंत उनका ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, ये यहाँ दलील दी है। तो अभी मान लेते हैं विशिष्ट इतने असंख्यात को जानता है, अभी पावरफुल अवधि ज्ञान होगा तो क्या है? उससे ज्यादा असंख्यात को जानेगा, असंख्यात गुना भाव को जानते रहेंगे। ये भाव में पर्यायों को ग्रहण किया यहाँ। अब शंका, द्रव्य में स्थित अनंत पर्यायों को प्रत्यक्ष से न जानता हुआ अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष से द्रव्य को कैसे जानेगा? क्या प्रश्न है? द्रव्य में अनंत पर्याय है, उनको यदि नहीं जानेगा तो द्रव्य को कैसे जान सकेंगे? उसका समाधान नहीं, क्योंकि उक्त अवधि ज्ञान पर्यायों के अवयवों में रहने वाली अनंत संख्या को छोड़कर असंख्यात पर्याय अवयवों से विशिष्ट द्रव्य का ग्राहक है। उन असंख्यात पर्यायों के द्वारा ही वो उस द्रव्य को जान रहा है, उसकी सभी अनंत पर्याय उसके ज्ञान में नहीं आते। फिर से दोबारा प्रश्न पूछना। नहीं, संख्या को, अनंत पर्यायों को, पर्यायों की संख्या, पर्यायों के अविभाग प्रतिच्छेदों की बात यहाँ नहीं हो रही है। कितनी पर्याय जानते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, हम कितनी पर्याय जान रहे हैं? जैसे ज्ञान की पर्याय हमारे ख्याल में आ रही है, जीव में तो अनंत, हम स्वयं जीव है और हमारी प्रति समय अनंत पर्याय हो रही है, तो कितनी पर्यायों को जान रहे हैं? ख्याल है ना, इस अपेक्षा से। अभी ये पुद्गल है, इसकी कितनी पर्यायों को हम इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर रहे हैं? तो उसका स्पर्श है, रस है, गंध, वर्ण, जो कुछ है, है ना? परंतु उस अनंत गुणों को तो हम उसकी पर्यायों को ग्रहण नहीं कर रहे, उसको जान नहीं रहे। अवधि ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उनकी इतनी असंख्यात पर्यायों को ग्रहण करेंगे और उसके द्वारा वो द्रव्य को जानेंगे। इंद्रियों द्वारा भी हम कुछ ही पर्यायों को ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा हम पुद्गल को नहीं जानते क्या? हम जानते हैं। इंद्रिय ज्ञान को तो व्यवहार से भी प्रत्यक्ष कहा है, व्यवहार है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हमने मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैंने प्रत्यक्ष सुना, ये वाला इंद्रिय ज्ञान तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, फिर भी उसको कहने में आता है, उसकी बात यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो अवधि ज्ञानी जो है वो प्रत्यक्ष है, परंतु सभी अनंतों को वो प्रत्यक्ष नहीं जानते, उसकी लिमिटेशंस है, असंख्यात भावों को वो जानेंगे। देखो नहीं, क्योंकि समाधान क्या है, अवधि ज्ञान क्या कर रहा है, पर्यायों के अवयवों में रहने वाली अनंत संख्या को छोड़कर असंख्यात पर्याय अवयवों से विशिष्ट द्रव्य का ग्राहक है। पर्याय द्रव्य का अवयव है, तो उसमें कुछ ही अवयवों को जानकर वो पूरे द्रव्य को जान लेता है। शंका, अतीत व अनागत पर्यायों की भाव संज्ञा क्यों नहीं है, अकेले वर्तमान पर्यायों को क्यों लिया, अतीत अनागत पर्यायों को यहाँ भाव क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि उन्हें स्वीकार किया गया है। क्या क्या उन्हें काल स्वीकार किया गया? अच्छा, काल शब्द डाला है। अच्छा अच्छा, हाँ, तेसिम कालत तब भूव गमा दो। अच्छा, ऊपर लिखा, देखो देखो, हम प्राकृत में बराबर है, आपकी बात समझ में है। देखो ऊपर क्या लिखा है, तीदान आगय अतीत और अनागत पज्जायानम किन्न भाव वयेसो। तो भाव के उपदेश में उसको क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, क्यों? तेसिम कालत तब भूव गमा दो, इन्हें काल के द्वारा उसको बताया है। द्रव्य का काल बताते ना, हमने देखा अवली के असंख्यात विभाग पूर्व और पश्चात को जानता है, वो द्रव्य को ही जानता है ना, क्या है उसके पर्याय को तो जानता है। जैसे कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज क्या कहते, कोई राजा गया उसको कहते 7 दिन के बाद इसका मरण होगा, तो 7 दिन पश्चात वाली पर्याय को तो जान रहे कि नहीं जान रहे? पूर्व की और पश्चात की पर्यायों को उसमें काल में ले लिया है, काल में उसका अंतर्भव हो गया है, काल में वो इंक्लूड हो गए। हाँ, उन्हें क्या काल स्वीकार है कि काल में स्वीकार है? काल है कि काल में है? काल है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, उन्हें काल स्वीकार किया गया, काल स्वीकार किया गया। ऊपर लिखा ना, तेसिम कालत तब हुआ गमा दो, ये प्राकृत में उसको काल कहा है, द्रव्य का अवधि काल, काल कहा उसको, उसको भाव नहीं कहा, उसको काल कहा। देखो प्रश्न क्या था, भाव संज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको काल स्वीकार, काल को इनटू इन्वर्टेड करना, उन्हें काल स्वीकार किया गया। हाँ? भाव में वर्तमान पर्याय को लिया, काल में भूत भविष्य की पर्याय को लिया, उसी द्रव्य को हम कैसे निश्चित करें? ये यही द्रव्य है, ये हम कैसे निश्चित करेंगे? उसके पर्याय से ही तो निश्चित होगा ना, ये द्रव्य की ये पूर्व पर्याय थी और ये द्रव्य की ये पर्याय होने वाली है। स्कंद की कहो या परमाणुओं की असंख्यात पर्यायों को वो ग्रहण करता है, उसी के द्वारा वो ये द्रव्य है निश्चित कैसे किया, ये अभी हमने इसको कैसे निश्चित किया श्रुति ज्ञान में, मति ज्ञान में, ये कलर है इसका, पिंक है इसका, इतना साइज है, हमने निश्चित किया, हमने कुछ पर्यायों को जानकर। दूसरे समय में जो कोई जो वर्तमान उसकी पर्याय चल रही है उसी को जानेगा।
अच्छा, वही जो पर्याय वो पहले जानता था वही पर्याय।
हाँ, उसकी उसका जो परिणमन हो रहा है उसको जानेंगे। अभी अवधि ज्ञान में भी कम ज्यादा होता है तो उसके अनुसार अधिक भी जानेंगे। हाँ।
देखो पुद्गल की जैसी जैसी पर्याय पलटेगी उन पर्यायों को जानेगा। उसके साथ में काल में लेंगे तो पूर्व और भविष्य की मतलब अतीत और अनागत दोनों जानेगा, उसकी लिमिट जो है काल की। जैसा जीव की अपेक्षा से हम मिथ्यात्व था तो सम्यक तो हुआ ऐसा कहते हैं, वैसे खट्टा था वो मीठा हो गया, इस तरह से आप ले लो, ये स्थूल अपेक्षा है।
देखो अभी आगे बढ़ते, ये भाव की बात चल रही ना अपनी, तो कितने असंख्यात पर्यायों को जानता है, वो असंख्यात की संख्या कितनी है, तो कहते हैं आवली का असंख्यात वे भाग मात्र, इतनी पर्याय। यहाँ काल को मत लेना, आवली का काल के द्वारा संख्या बता रहे हैं। देखो हम जब कहेंगे कटोरी भर चावल ले आओ, तो हमको वो कटोरी जितना उसका वॉल्यूम बताना है कि उसमें कितने पीसेस है उसको बताना है ना, पीसेस बताना है। अभी काल की अपेक्षा भी कहेंगे तो एक मिनट में जितने सेकंड होते हैं उतने आप लड्डू बनाओ, तो हमने वहाँ काल को नहीं बताया, संख्या को बताया। वैसे आवली के असंख्यात भाग में जितनी असंख्यात की संख्या है उतने पर्यायों को जानता है। क्या ले, ये आवली का असंख्यात भाग काल में भाव में लगाना है, काल में नहीं, ये संख्या बताने वाला है। इसको कहते हैं वो तो माप, माप है ना, ये गणना करते हम इसको। पहले हमने देखा था कि काल के द्वारा भी संख्या को बताएंगे, तो वहां आवली कहेंगे, पल्ल्य कहेंगे वगैरह वगैरह। क्षेत्र की अपेक्षा भी संख्या को ही बताएंगे, तो वहां अंगुल कहेंगे, लोक कहेंगे, तो अंगुल में जितने प्रदेश है उतनी संख्या कहेंगे। अभी काल, काल को बताने के लिए भी वो आवली वगैरह का माप होगा, और भाव या संख्या बताने के लिए भी आवली का माप होगा। तो किस लिए वो आया है वो हमें, ये तो कॉमन सेंस से जाना पड़ेगा। देखो क्या कहते, 27 की जो काल स्वीकार किया गया, सॉरी मेरा पेज पलट गया, हम 28 पृष्ठ पर आ गए हैं, परंतु वहां जो आवली का असंख्या था भाग हमने देखा था वो काल नहीं था, वो संख्या थी, ये अभी समझ लो। अभी पन्ना पलट ही गया तो ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। 27 पृष्ठ पर बीच वाला जो बड़ा पैराग्राफ है उसमें जो भाव की बात आई थी, जघन्य अवधि ज्ञान कितने भाव को कितने पर्यायों को जानता है, तो उसमें बात आई थी आवली के असंख्यात भाग मात्र पर्याय, आवली का असंख्यात भाग पर्याय नहीं, वो संख्या बता रहे है सभी वर्तमान की। आवली के असंख्यात भाग काल में बनने वाली ऐसा उसमें अर्थ नहीं करना है, नंबर ऑफ पर्याय है वे, इतनी पर्यायों को जानेगा। जैसे हम कहेंगे लाख पर्यायों को जानेगा कि 10 लाख को जानेगा, तो आवली के असंख्यात भाग में जो संख्या है फिगर, उतनी संख्या उतने पर्यायों को जानेगा। ये तो संख्या बताने वाला माप है भावों का। अब ये पन्ना पलट के 28 पृष्ठ पर, ये हवा से मेरा उड़ गया था ना तो उल्टा गया पीछे। देखो अब प्रश्न क्या पूछा था कि वर्तमान पर्यायों को ही विषय करता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, भूतकाल के और भविष्यकाल के पर्यायों को भी स्वीकार तो उसको जानता तो है, तो उसको काल कहा है, क्योंकि हमने देखा पहले पीछे इतने काल तक जैसे भरत क्षेत्र की बात आई थी तो भूतकाल में 15 दिन और भविष्यकाल में 15 दिन तक जानता है, तो भरत क्षेत्र के अंतर्गत जो कोई उनके मर्यादित उनका जो कितना द्रव्य का प्रमाण है उतने स्कंधों को उनकी पूर्व की 15 दिन तक की पर्याय और पश्चात 15 दिन तक की पर्यायों को वे जानेंगे, उसको काल में इंक्लूड कर दिया, काल में उसको अंतर्गत कर दिया। भाव में तो वर्तमान पर्याय लेना, भाव में नहीं काल में लिया है, इसलिए भूत भविष्य की पर्याय छोड़ी ऐसा नहीं कह सकते। उन पर्यायों को यहाँ काल में ले लिया। इस प्रकार जघन्य भाव की प्ररूपणा की गई है। जघन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य देखा, क्षेत्र देखा, काल देखा और भाव देखा। काल में भी हमने अवली का असंख्यात्व भाग देखा, वो वहाँ समय समझना, और भाव में भी अवली का असंख्यात्व भाग इतने पर्याय देखे, वहाँ संख्या समझना। अब आगे अब जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को परिपाटी से स्थापित कर द्वितीय अवधि ज्ञान के विकल्प को कहते हैं। हमें मालूम है ना, जघन्य द्रव्य ने कहाँ तक के सूक्ष्म स्कंध को जानता है, उसको जघन्य द्रव्य कहा, जिसको हमने वहाँ ए नाम दिया था, ये जघन्य द्रव्य हुआ। जघन्य क्षेत्र कितना है, तो सूक्ष्म निगोध लब्धि अपर्याप्त तक की जो जघन्य अवगाहना है उसको लिया। काल में आवली का असंख्यात्व भाग वाला जो कुछ यथायोग्य काल लिया, और भाव में भी आवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण संख्या को लिया। तो ये हमने जघन्य के स्थापित किए, ये लोअर लिमिट अवधि ज्ञान की, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की कम से कम ये मर्यादा है, इसको जानता है जघन्य अवधि ज्ञान। ख्याल है? अब आगे बढ़ेंगे हम। अब दूसरा जो अवधि ज्ञान है, दूसरा विकल्प है ना, दूसरा भेद। अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद है, जितना पावरफुल होगा उसका उसका उतना उतना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी अंतर पड़ेगा। द्रव्य में क्या होगा, और सूक्ष्म सूक्ष्म को जानने लगेगा, भाव में और अधिक अधिक पर्यायों को जानेगा, क्षेत्र में अधिक लंबे क्षेत्र तक जानेगा, और काल अधिक वो पूर्व और पश्चात के अधिक अधिक काल तक को जानेगा। तो ये जो दूसरे विकल्प में सारे वही के वही हो, थोड़े बढ़ेंगे कि क्या होगा अवधि ज्ञान का जो दूसरा विकल्प है उसमें क्या होगा, तो वो सभी के सभी एक साथ नहीं बढ़ते हैं। तो द्रव्य सूक्ष्म सूक्ष्म होता चला जाएगा। हमने कल देखा था, मान लेते इसके सूचंगुल के, मान लेते हम 10 विकल्प हो गए, परंतु होते सूचंगुल के असंख्यात भाग इतने द्रव्य के विकल्प हो जाएंगे अलग अलग, तब जाके क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। क्षेत्र उतना का उतना ही रहेगा। अब क्षेत्र भी बढ़ते 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 चले जाएगा, फिर भी काल तो उतना का उतना रहेगा। उतने सारे विकल्प होने पर भी काल में एक समय या जो कुछ यथायोग्य बढ़ोतरी होगी। अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उसका बिल्कुल स्थूल रूप से उसकी आइडिया दी है कि क्या होने वाला है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि द्वितीय अवधि ज्ञान के विकल्प को देखते हैं, वह इस प्रकार है। देशावधि, सर्वावधि और परमावधि के द्रव्य की प्ररूपणाओं में, द्रव्य की प्ररूपणा कैसे देखी थी हमने, कि वो नंबर ऑफ परमाणु कितने स्कंध को जानता है, उसको हमने द्रव्य की प्ररूपणा देखी। उसमें मेरु पर्वत के समान अवस्थित मनोद्रव्य वर्गणा के अनंत विभाग का विरलन करके उसके ऊपर क्या कहते हैं, पहले इसको समझेंगे। मेरु पर्वत के समान अवस्थित का अर्थ क्या है? हाँ हाँ हाँ, आप क्या कहते हैं? देवेंद्र भाई आप क्या कहते हैं, आपने पढ़ा है ना पहले? नहीं? हाँ नहीं, अभी पढ़ के बताओ ना। हाँ, उसमें यही शब्द है क्या, कुछ अंतर है, अलग है? हाँ, कॉन्सेंट्रेट करके बताओ। तो मेरु पर्वत के समान अवस्थित, मेरु पर्वत जैसे वैसा का वैसा है, ध्रुव पर्वत को अचल भी कहते ना, अन्य पर्वतों को तो भुगा भी हो जाता है, हवा से भी वो उसके शेप बदलते रहते हैं और क्या क्या होता है ना, परंतु यहाँ मेरु पर्वत ऐसा के ऐसा ध्रुव है, तो यहाँ जो हम भाग देने वाली संख्या है वो भी उसको ध्रुव भागहार कहते हैं। अवस्थित यानी उतनी की उतनी, मेरु पर्वत का तो दृष्टांत दिया, इस मेरु पर्वत से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। तो ये अवस्थित कैसा है, तो मेरु पर्वत के समान अवस्थित है, यानी ध्रुव जो है, यानी वही की वही संख्या रहेगी। अब उसी एक संख्या से हम बार बार भाग देते जाएंगे। यानी यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अभी हमने जो जघन्य अवधि ज्ञान का जो स्कंद देखा है, जिसको हमने ए नाम दिया था, तो इससे आगे वाला अवधि ज्ञान इससे छोटे वाले स्कंद को जानेगा। मान लेते यहाँ लाख परमाणु के स्कंद को जानता था, तो वो लाख को हम किसी एक संख्या से भाग देते, मान लेते 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 आएगा ना। तो ये 20,000 वाला ये दूसरा भेद होगा। तीसरे भेद में उसी 5 संख्या से ही उसको भाग देना है, फिर 4,000 आएगा। फिर उसी विकल्प द्रव्य के विकल्प के लिए, द्रव्य के अवधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा से भेद देख रहे हम। अवधि ज्ञान के भेद अलग अलग है, द्रव्य की अपेक्षा से भेद हो गए, क्षेत्र की अपेक्षा से अलग भेद हो गए, काल की अपेक्षा से अलग भेद हो गए, भाव की अपेक्षा से अलग भेद हो गए। अभी यहाँ हम केवल द्रव्य की अपेक्षा से भेद देख रहे हैं। तो पहला भेद हमने देख लिया, दूसरा भेद निकालने के लिए विशिष्ट संख्या से भाग देना है, और उसी उसी संख्या से भाग देते जाएंगे तो द्रव्य की अपेक्षा आगे आगे के भेद आएंगे। जब द्रव्य की अपेक्षा से भेद देखेंगे तो लाख परमाणु को जानता था, फिर उसका दूसरा विकल्प वाला 99,999 के जानेगा, ऐसा नहीं है। उसमें एकदम वो ध्रुव भागार से भाग, जैसे लाख का 20,000 हो गया ना, 5 से हमने भाग दिया, 20,000 का 4,000 हुआ। तो द्रव्य की अपेक्षा से जो अगले वाला अवधि ज्ञान है, वो उस भागार से भाग देने पर जो स्कंद का प्रमाण आएगा परमाणुओं का, उतने स्कंद को जानेगा। उसके आगे वाला उसे छोटे स्कंद को जानेगा, उससे आगे वाला उससे छोटे। परंतु ये छोटे का प्रमाण कैसा निकला, उसी उसी संख्या से हम भाग देने वाले हैं। भागाकार भागहार, जो भागहार, भागाकार मत कहो, भागहार जिससे भाग देते हैं, भाजक जिसको भाजक कहते हैं, वो संख्या वही की वही है, इसलिए उसको अवस्थित कहा। और उसको दृष्टांत दिया मेरु पर्वत का, उसको ये गोमटसार में उसको ध्रुव भागहार कहा है, ध्रुव भाजक, वही की वही है संख्या। और वो सब वो अभी बता रहे हैं ना, हाँ वही तो बता रहे, परंतु वो क्या बता रहे वो पहले हमको पता नहीं है ना। उन्होंने एक वाक्य में पूरा लंबा चौड़ा वाक्य बना दिया। अभी अवस्थित भागहार क्या है और वो किसके लिए है, तो देशावधि के, परमावधि के, सर्वावधि के, सबके जो द्रव्य की अपेक्षा भेद होंगे उसको निकालने के लिए ये ध्रुव भागहार होता है। देशावधि के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक इतने सारे भेद होंगे, उसके आगे परमावधि के भेद होंगे, और उसके आगे सर्वावधि का जो एकमात्र जो परमाणु है उसकी अंतिम संख्या। यदि हम मान लेते हैं, ये समझने के लिए जघन्य देशावधि से हमने शुरू किया, यहाँ कोई जघन्य देशावधि के द्रव्य की अपेक्षा मान लेते हैं 10 भेद है, जघन्य देशावधि के 10 हो गए, बस ये ऐसे कर 10 भेद देशावधि के हो गए। आगे और मान लेते हैं हम कि 6, 7, 5 सिंपल फिगर लेने के लिए 5 भेद परमावधि के मान लेते हैं, और सर्वावधि का तो एक ही भेद होता है अंतिम, जो एक परमाणु तक को जानता है। अब ये जो इतने विकल्प द्रव्य की अपेक्षा हमने देखे, विकल्प है ना, भेद देशावधि के, परमावधि के और सर्वावधि के सबके मिलकर ये द्रव्य कितने द्रव्य को जानता है, कितने द्रव्य को जानता है, कितने द्रव्य को जानता है, तो उसी भागहार से हर बार हम भाग देंगे। हम उल्टा करेंगे तो सर्वावधि एक परमाणु तक को जानता है, अभी उसको गुणा करेंगे तो सर्वावधि के आगे क्या होगा, परमावधि का उत्कृष्ट होगा, वो कितने परमाणुओं को जानता है, एक परमाणु को ध्रुव भागहार से गुणा करेंगे। ये सर्वावधि उत्कृष्ट होता है, क्रम लिखा है अलग, परंतु सबके लिए वही भागहार है, इतना ही बदलना है, इतना ही यहाँ समझना है। नहीं नहीं सर्वावधि वो सर्वोत्कृष्ट होता है ज्ञान, यहाँ क्रम उल्टा है। हाँ ये ख्याल में आता है ध्रुव भागहार, ये भागहार देते 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 अंत में क्या बचेगा, एक परमाणु सर्वावधि के लिए। तो कितनी बार भाग देना पड़ेगा, अभी जितने भेद है उतने बार नहीं, कोई भी अपेक्षा ले लो जो उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट ही है। सर्वावधि एक परमाणु को जानता है, सर्वावधि एक परमाणु को जानता है, परमावधि नहीं, सर्वावधि। और उसके कोई भेद नहीं होते हैं क्योंकि सर्वोत्कृष्ट है वो। देखो ये निकालना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपने मन में कोई ऐसा विकल्प मत रखना। नहीं वो तो जनरल बात है, यहाँ कोई ये डिस्कशन है कि ये तीनों भेद है वो कौन सी अपेक्षा से निकलेंगे, तो ध्रुव भागार। हाँ कि परमावधि के भी उन्होंने भेद किए हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र उत्कृष्ट काल की बात उन्होंने 550 वगैरह वहां आई है, वो परमावधि के उन्होंने भेद वहां बताए हैं। आपको देखें 546 पृष्ठ पर देशावधि के बाद 546 पेज पर देशावधि के भेद बताने के बाद परमावधि के भेद उन्होंने बताए हैं। वहां लिखा है देखो 413 नंबर के सूत्र में, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का विषयभूत जो द्रव्य है, अपना जो विषय चल रहा है ना वो ज्यादा क्लियर होगा। अभी हमने देखा द्रव्य की अपेक्षा देशावधि में जो अधिक से अधिक पावरफुल ज्ञान है उसको क्या कहेंगे, उत्कृष्ट देशावधि। उसके आगे वाला भेद कौन सा होगा, जघन्य परमावधि। तो उसमें द्रव्य कितना होगा, वो ध्रुव भागहार से भाग देना, बराबर। एक परमाणु की वहां कम कटौती नहीं होती, एकदम वो उसके इतने भाग में हो जाता है। तो वहां ध्रुव भागहार देना एक बार, उतने परमाणु के स्कंध को उत्कृष्ट परमावधि जानता है, अभी भी परमावधि स्कंध को जान रहा है परमाणु को नहीं, ये तो जघन्य परमावधि हुआ। उसके आगे उत्कृष्ट परमावधि की उन्होंने बहुत विस्तार से बात की, जो अभी आगे आएगी अपने, अपना ये विषय अभी यहाँ नहीं है, अपने को इतना ही देखना है कि सर्वावधि सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ तो जनरल उन्होंने बात चल रही थी कि ये जो देशावधि परमावधि सर्वावधि आदि जो कुछ भेद है वो भेद कौन सी अपेक्षा से किए हैं, द्रव्य की अपेक्षा। तो ये द्रव्य की संख्या कैसे निकालनी है, उसी भागहार से भाग देते जाना, उसको ध्रुव भागहार कहते हैं, जिसको अवस्थित भागहार कहेंगे। उसकी संख्या कितनी भागाकार की वो अब बताने जा रहे। देखो अब यहाँ आप 28 पृष्ठ पर देखना, देखो देशावधि सर्वावधि और परमावधि के द्रव्य की परिकल्पनाओं में क्या लिखा है। हाँ तो सर्वावधि सर्वोत्कृष्ट हुआ। हाँ ये तो उसमें कोई शक है ही नहीं है, यहाँ तो कोई भी पहले दूसरे इन सब में कौन से आधार पर ये उसके भेद करते हैं द्रव्य की अपेक्षा, तो ध्रुव भागहार से भाग देते चले जाते हैं, इतना ही लेना है। परंतु सर्वावधि सर्वोत्कृष्ट है ये बात अपने ख्याल में रखना, भले यहाँ क्रम ऐसा वैसा दिया तो भी। अब बढ़ेंगे क्या आप, पढ़ना है आगे। हाँ देखना उसमें पुस्तक में 28 पृष्ठ। तो उसकी द्रव्य की प्ररूपणा में ये जो अभी संख्या बताने जाने वाले हैं भागहार की, वो केवल द्रव्य की प्ररूपणा में चलेंगे। अवधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा जितने भेद है उसके लिए क्या करना है, जो हमने पहले में पहले जघन्य अवधि ज्ञान का जो द्रव्य देखा है वो औदारिक का संचय, उसको लोक का भाग देना वगैरह वगैरह देखा था ना, उसको ये ध्रुव भागहार से भाग देते जाएंगे। ध्रुव भागहार ने वो फिक्स्ड उसका कोई डिवाइडर है, उसी से हर बार उसको भाग देते जाएंगे। तो द्रव्य की अपेक्षा अगला 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 दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद, पांचवा भेद, ये संख्या है उसका कितना द्रव्य को जानता है उसको हमें पता चलेगा, और कितने भेद हो गया अवधि ज्ञान के उसकी भी संख्या मिलेगी हमें। तो देखो मेरु पर्वत के समान अवस्थित, यानी ये ध्रुव संख्या है ये बताने के लिए उसको लिखा मेरु पर्वत के समान अवस्थित, इस शब्द का अर्थ है ध्रुव संख्या है और कुछ उसमें से अर्थ नहीं निकालना। क्या होता है ऐसी कौन सी है, तो मनोवर्गणा मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवे भाग का विरलन करके, मनोवर्गणा में भी अनंत है ना, जैसे हमने आहार वर्गणा देखी वैसे मनोवर्गणा तो और सूक्ष्म है, तो उसकी जितनी वर्गणाएं हैं उसका जो अनंत भाग है वो भी अनंत है, उसका पहले विरलन कर दो और उसके ऊपर जघन्य द्रव्य को समखंड कर देने पर, ये ऐसा उल्टा लिखा है ना, उसके बदले हम जघन्य द्रव्य को उससे भाग देने पर ऐसा कहेंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे हमने लाख माना था पहले और भागहार हमने 5 का लिया था, तो ये भागहार को विरलन कर दो तो 5 को हमने 5 बार एक एक लिख दिया, 5 का भागहार का विरलन करना है और उसके ऊपर जो जघन्य द्रव्य उसको समखंड करके देना, तो लाख को 5 में डिवाइड करना है समखंड में, तो एक एक के खाते में 20,000 आएगी ना, यही बात यहां बता रहे हैं। फिर पढ़ती हूँ, तो यहाँ भागहार का प्रमाण कितना है, मनोवर्गणा द्रव्य के अनंतवा भाग, ये भागहार हुआ, तो मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवे भाग का विरलन करके, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने 5 को विरलन करके उसके ऊपर जघन्य द्रव्य को, जघन्य द्रव्य ने वो हमने विश्रसोपचय सहित औदारिक शरीर का घना उसको डिवाइडेड बाय घनलोक, घनलोक हाँ, तो वहाँ जितनी संख्या आई थी उसको ये जो मनोवर्गणा का अनंतवा भाग है उससे भाग देना है, ये अपना ध्रुव भागहार है, कर देने पर उसमें एक रूप धरित खंड, एक रूप धरित खंड है ने? जैसे अभी हम अपने एग्जाम्पल में ही समझेंगे, 5 का विरलन किया यानी 5 बार एक 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 लिख दिया, जघन्य द्रव्य हमने 100,000 मान लिया था उसको समखंड करके देने ये 5 में हमने विभाजित कर दिया, तो एक रूप धरित यानी एक रूप यानी एक संख्या उसके ऊपर कितनी संख्या आई, 20,000, तो एक रूप धरित खंड यानी 20,000 वाला वो जो खंड है वो द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है। द्रव्य का द्वितीय विकल्प का अर्थ होता है द्रव्य की अपेक्षा अवधि ज्ञान का दूसरा विकल्प है, यानी देशावधि के हम द्रव्य की अपेक्षा भेद करते हैं, इतने द्रव्य को जानने वाला, फिर छोटे द्रव्य को जानने वाला और छोटे द्रव्य को जानने वाला, जैसे पहला हमने लाख को जानने वाला फिर 20,000 को जानने वाला, वहां तक के सूक्ष्म को 20,000 से नीचे को नहीं जान रहे, ऊपर को सबको जान रहा है, वो भी लाख को जान नहीं रहा है, ऐसा नहीं समझना वो अभी लाख का जानना छोड़कर खाली 20,000 को जान रहा है, कहाँ तक के सूक्ष्म को जान रहा है, द्रव्य में हम उल्टा प्रोपोर्शन ले रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर का अवधि ज्ञान है, तीसरे नंबर का अवधि ज्ञान उससे पावरफुल है, तो 20,000 को और 5 से भाग देंगे तो वो 4,000 वाले द्रव्य तक के सूक्ष्म को जानेगा, आगे आगे के भेद अधिक अधिक सूक्ष्म को जानते जाएंगे, तो ये द्वितीय विकल्प होता है। हाँ ये मनोवर्गना का जो अनंत वा भाग है उसको हम अवस्थित संख्या कहेंगे, ध्रुव संख्या, ध्रुव भागहार जिसको कहते हैं, जिस भागहार से हम बार बार भाग देने वाले हैं। अभी तो दूसरा विकल्प निकला द्रव्य की अपेक्षा, तीसरा विकल्प के लिए क्या करेंगे, फिर उसको उसी संख्या से भाग देंगे। ऐसे कहाँ तक जाएंगे, सर्वावधि तक चले जाएंगे, जब एक संख्या आएगी परमाणु की, अंतिम संख्या एक बचेगी, तब तक ऐसे ही भेद होंगे। क्योंकि पूर्वोक्त जघन्य द्रव्य की अपेक्षा करके एक दो परमाणु आदि कोण से हीन पुद्गल स्कंद के ग्रहण करने में समर्थ ऐसे ज्ञान के निमित्तभूत अवधि ज्ञानावरण के क्षोभशम का अभाव है। फिर से ये भाषा ना समझ में नहीं आती जल्दी। हमने लाख मान लिए परमाणु, तो ऐसा ज्ञानावरण था कि जो अवधि ज्ञानावरण, तो लाख परमाणु तक को जाने, उससे नीचे को नहीं जाने। तो कैसे ऐसा भी कोई भेद हो सकता है अवधि ज्ञान का द्रव्य की अपेक्षा, कि जो 90,000 को जाने, तो ये कहते ऐसा नहीं हो सकता, 1, 2, 4 ऐसा नहीं हो सकता। एकदम लाख के बाद अगले वाला ज्ञान का भेद क्या है, भी 20,000 को जानेगा। ऐसा 20,000 वाला जानेगा, वो हम सूक्ष्म की लिमिट ले रहे हैं ना, मिनिमम लिमिट देख रहे हैं। सूक्ष्म वाला तो लाख क्या, 4 लाख 10 लाख को भी जानेगा उसकी मिनिमम लिमिट देखनी है। मिनिमम संख्या है ऐसा, मिनिमम जिसके 90,000 है, मिनिमम 80,000 ऐसा नहीं हो सकता। लाख मिनिमम है ना, दूसरा भेद कितना जानेगा उसका, एकदम 20,000 तक उसकी लोअर लिमिट, यानी बीच वाले सभी विकल्पों को तो जानेगा क्योंकि वो तो बड़े है ना। लोअर लिमिट हम देख रहे हैं, द्रव्य में लोअर लिमिट देख रहे हैं। ये तो क्या लाख के ऊपर को भी, हाँ बीच वाले अलग अलग स्टेप नहीं, जैसे प्रदेशों में एक एक प्रदेश से वृद्धि होगी या जो कुछ है, वैसा यहाँ द्रव्य में एकदम एक लॉट, जैसे ऊपर की लाइन पढ़ रहे थे अभी, एकदम बहुत छोटा हो गया अक्षर, नहीं हीन नहीं दे। लाख में से 2 परमाणु कम हुए उसको जाना, 10 परमाणु कम हुए उसको जाना, ऐसा नहीं होगा। ऐसे दूसरा तीसरा चौथा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प की कितनी कंडीशन है, वो 20,000 तक के छोटे को जानेगा। पहले नंबर का अवधि ज्ञान लाख वाले को जान रहा था, दूसरे नंबर का अवधि ज्ञान 20,000 तक को जानेगा, छोटे में छोटे। बीच वाले को तो जान ही रहे ना, 90, 80, 70 वगैरह, उसको उसकी कहाँ ना है। हाँ एक एक आप बढ़ने की क्यों कर रहे, हम घटाने घटा रहे, द्रव्य में घटाना है, क्यों नहीं जानेगा 20,000 और एक को भी जानेगा। जो 20,000 को जान रहे हैं दूसरा विकल्प, हाँ तो ऊपर के सभी को जानेगा। हमें नीचे की मिनिमम लेवल उसकी कितनी है उसको देखना है। हाँ 19,000 दूसरा विकल्प, स्कंद जाने नहीं 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 वो तो मिनिमम हम यहाँ देख रहे हैं, मैक्सिमम की बात क्या करनी नहीं है। हाँ देखो यहाँ क्या बताया, हीन पुद्गल स्कंद को नहीं जानेगा, ऐसी बात। सबको जानेगा, हाँ तो उसकी मिनिमम लेवल कितने है, यानी लाख में से एकदम ड्रॉप होकर 20,000 तक आ गया। नहीं 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 उसको नहीं, नहीं नहीं उनका वो एक परमाणु की बात नहीं। हाँ नहीं 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 आप एक परमाणु की बात नहीं पूछ रहे मुझे पता है, परंतु लाख की उसकी लोअर लिमिट थी। अब लोअर लिमिट 90,000 की नहीं होगी, एकदम लोअर लिमिट एकदम यानी उसका ज्यादा जानेगा वो, नीचे की ओर ज्यादा तक जानेगा वो, 20,000 उसके देखिए देखिए आप दो अलग अलग ज्ञानों की यहाँ चर्चा है, एक ही जीव के अलग अलग समयों की बात यहाँ नहीं हो रही है। वही जीव अगले समय में कितना जानता है उसकी बात यहाँ नहीं है। कोई एक जीव को जघन्य अवधि ज्ञान है तो ये हमने मान लिया है लाख वाला जानता है, तो उससे पावरफुल वाला अवधि ज्ञान है उसकी लिमिट कहाँ तक है, तो उसकी 20,000 तक जानने की है। तीसरे वाला है उसकी कितनी है, तो 4,000 वाले स्कंद तक को जानने की उसकी पावर है। जो 4,000 वाला को जानेगा वो 4,001 को जानेगा ही जानेगा, आगे के सभी विकल्प वो बड़े बड़े को सबको जानेगा। उसकी नाक किधर है, द्रव्य में है, उल्टा प्रोपोर्शन ले रहे हैं। तो 20,000 के आगे वाला जो है वो 4,000 हो जाता है, उसमें 19,000 तक ही जानेगा, नीचे को नहीं जानेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब हमने पहला जो देखा लाख देखा, तो दूसरा भेद ऐसा नहीं होगा कि अभी वो 99,000 या 90,000 को ही जान रहा है, नीचे को नहीं जान रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो उसकी लिमिट नीचे 20,000 तक को जानने की है, यानी वो ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी होती है कि वो स्कंद इतना छोटा हो जाता है। उसकी अभी बात नहीं है, अभी अवधि ज्ञान के अलग अलग भेद की बात चल रही है। अवधि ज्ञान में भी हीयमान वृद्धमान वृद्धिमान ऐसे होते हैं, बढ़ने वाला या कम होने वाला, वो तो उसके अलग भेद होंगे, 6 भेद अलग होंगे। कोई बढ़ता है, कोई कम होता है, किसी का छूट जाता है, किसी का नहीं भी छूटता है, कोई अगले भव में चले जाता है, उसकी बात ये अभी अपना विषय नहीं है। वो तो आसान है, ये जो ये समझने में भी ये भाषा ख्याल में नहीं आ रही, तो अभी इसमें और दूसरा विषय मत निकालना। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्यूजन बढ़ेगा आपको, ख्याल है ना। ये सभी प्रश्नों के उत्तर तो आने ही वाले हैं। हाँ देखो मनोवर्गना कितने लेना है अभी हम देखेंगे उसको। इसका पहले ये वाक्य का अर्थ क्या ख्याल है? हाँ विश्रसोपचय बहुत है ना, विश्रसोपचय सहित वाला औदारिक लिया था और उसको इससे भाग दिया है। अभी उसका प्रमाण हम देखते हैं। देखो ध्रुव भागार का प्रमाण कितना है, तो सामान्य से कहेंगे तो सिद्ध राशि के अनंत वे भाग है, सामान्य कथन जो एक सामान्य होता है और एक स्पेशल उसमें स्पेसिफिकली कुछ बताते हैं, तो वो कितना है, तो 532 में 386 गाथा है। मनोवर्गणा के जितने भेद है तिनको अनंत का भाग दीजिए। मनोवर्गणा के भेद यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, इसको मनोवर्गणा के भेद कहेंगे। मनोवर्गणा कितनी है, तो हम समझे कि 50 से लेकर 200 तक है मान लेते, तो भेद कितने हो गए, तो 200 में से 50 माइनस करो एक मिला दो, इतने उसके भेद हो गए ना उसके, तो कहते हैं मिला आपको। हाँ वही उसी को यहाँ अधिक क्लियर ज़्यादा समझा रहे। मनोवर्गणा के जितने भेद हैं तिनको अनंत का भाग दीजिए, एक भाग का जितना प्रमाण होई सो ध्रुव ध्रुवहार का प्रमाण, ध्रुवहार यानि ध्रुव भागहार यानि ध्रुव संख्या जिससे हम बार बार भाग देने वाले हैं भाजक। ते मनोवर्गणा के भेद केते है सो कहिए, ये प्रश्न था ना अरविंद भाई का, मनोवर्गणा कितनी है उसके भेद कितने हैं उसको आप बताते हैं। मनोवर्गणा का जघन्य प्रमाण को मनोवर्गणा के उत्कृष्ट प्रमाण में से घटाना, जो अवशेष रहेगा तीन में से एक अधिक के मनोवर्गणा के भेदों का प्रमाण हो है। अभी हमने देखा 200 है उत्कृष्ट और जघन्य है 50, 200 में से 50 कम कर दो एक मिला दो, क्योंकि 50 को भी गिनना है और 200 को भी गिनना है। 50 वाला भेद एक है, 51 वाला दो है, इस तरह से आप गिनेंगे तो 151 हो जाएंगे। अभी उसका प्रमाण कहते हैं, मनोवर्गणा का जघन्य भेद अनंत प्रमाण है। नीचे की गाथा 387 की गाथा, ठीक है, बीच में मैंने एक दो चार लाइन छोड़ दी है जिसका इसमें से कुछ लेना नहीं है, आपके सामने पुस्तक नहीं ना इसलिए मैं आगे पढ़ रही हूँ। अनंत परमाणु का स्कंध रूप जघन्य मनोवर्गणा है। वर्गणा कोई भी है तो उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, हमने देखा था ना अनंत परमाणुओं का स्कंध है, उसको यहाँ वर्गणा कहा है, वर्गों के समूह को वर्गणा, वर्ग यानी यहाँ मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु है उसको यहाँ वर्ग कहेंगे, उन परमाणुओं का जो समूह उसको कहेंगे वर्गणा। इस प्रमाण को अनंत का भाग दिए, उसका यदि हम अनंत का भाग देंगे और जो प्रमाण आवे तितना उस जघन्य का भेद प्रमाण विषय जोड़े, जो प्रमाण होई सोई मनोवर्गणा का उत्कृष्ट भेद का प्रमाण जानना। क्या कहते हैं, ये अनंत का, अनंत को हम कोई भाग देंगे और जो संख्या आएगी वो उसी में मिलाना। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 को 10 से भाग दिया तो 100 आए, तो 100 हमने 1000 में मिला दिए, अनंतवा भाग करके उसी में मिला देना, जिसको हम अनंत भाग वृद्धि भी कहते हैं। तो ये उत्कृष्ट हुआ और उत्कृष्ट में से जघन्य मिला माइनस कर दो एक मिला दो। अभी वो पहला 50 और 200 वाला भूल जाओ, 1000 और 110 अभी हम लेते हैं, 1000 और 1100, तो 1000 वाला जघन्य है और 1100 वाला उत्कृष्ट है। हमने क्या किया था, भाग किससे दिया था, 10 से भाग दिया था ना, बराबर है ना, तो 1100 माइनस 1000 और फिर एक मिला दो, 101 हो गई ना, तो 100 से भाग दिया था हमने, ये 10 से भाग दिया था और वो 1100 आए थे वहां पर सब टोटल उसके मिलाने पर, तो 101 उसके भेद हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ जघन्य मनोवर्गणा को विशिष्ट अनंत का भाग देना, जो संख्या आएगी भाग देने पर वो ओरिजिनल में मिला देना तो उत्कृष्ट संख्या आएगी, उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करो एक मिला दो तो मनोवर्गणा के अलग अलग भेद होंगे। इस मनोवर्गणा में ये कम परमाणु है, इसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है, वो भी अनंत हो जाएंगे। ये बाकी बातें उसके गणित वगैरह भूल जाओ, पर बेसिक क्या है उतना समझना है हमको। इतने परमाणु का स्कंध रूप उत्कृष्ट मनोवर्गणा हो है, जैसे हमने वो 1100 निकाला संख्या, तो ये उत्कृष्ट वाला हो गया। सो जघन्यते लगाई यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत जितने मनोवर्गणा के भेद है तिनके अनंतवे भाग मात्र, मनोवर्ग घटना के भेद कितने अनंत हो गए, उसका भी अनंतवा भाग इतना ध्रुव भागहार का प्रमाण है। मनोवर्गणा का अनंत भाव, ये तो उन्होंने स्थूल कथन कर दिया। मनोवर्गणा का अनंतवा भाग का क्या अर्थ है? मनोवर्गणा के जितने भेद है उसका अनंतवा भाग। कितने भेद हमने 101 भेद देखे ना, 1100 माइनस 1100 हो गए, उसमें एक मिला 101 हुए। अभी 101 का अनंतवा भाग वो ध्रुव भाग है, वो भी अनंत है। ये केवल ज्ञान गम्य ये बातें हैं, क्या है सामान्य से कथन किया ही था उन्होंने सिद्ध राशि के अनंत विभाग, उसमें भी कोई स्पेसिफिक अनंत है उसको बता रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। कुछ कहा आपको दोबारा चाहिए पैराग्राफ? हाँ देखो, फिर दोबारा पढ़ते हैं इसको, अभी हम पढ़ेंगे, अभी इसका अर्थ ख्याल में आएगा, नहीं कहीं आता है तो फिर रोकना। अब जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को परिपाटी से स्थापित कर, यानी अभी हमने सबका जघन्य देखा है, उसको अभी स्थापित करना, ये जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्वितीय अवधि ज्ञान के विकल्प को कहते हैं, अवधि ज्ञान का दूसरे भेद को कहेंगे, परंतु द्रव्य की अपेक्षा भेद अलग होगा, क्षेत्र की अपेक्षा भेद अलग होगा, काल की अपेक्षा भेद अलग होगा और भाव की अपेक्षा, तो यहाँ द्रव्य की अपेक्षा भेद चलेगा, वह इस प्रकार है। देशावधि सर्वावधि और परमावधि के द्रव्य की प्ररूपणाओं में, या अकेले द्रव्य की प्ररूपणा ली, यहाँ क्षेत्र और काल की बात यहाँ नहीं उठा रहे। मेरु पर्वत के समान अवस्थित, यानी जो ध्रुव संख्या है, कौन सी वो संख्या? मनोद्रव्य वर्गणा के अनंत विभाग, यानी मनोवर्गणा के जितने भेद है उससे अनंत विभाग। मनोवर्गणा के भेदों के अनंतवा भाग, उसका विरलन करके, जैसे हमने 5 का विरलन किया था और लाख उसमें विभाजित किया था, है ना, तो उसका विरलन करके, यानी जो अनंत संख्या आई है, मनोवर्गणा का अनंतवा भाग भी अनंत है, उसको एक 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 करके स्थापित करना, और उसके ऊपर जघन्य द्रव्य को समखंड कर देने पर, जघन्य द्रव्य जो हमने देखा था विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर के परमाणु डिवाइडेड बाय लोक, घनलोक, लोक कहते ही घनलोक कहता है, तो उसका समखंड कर देना। दूसरी भाषा में जो जघन्य द्रव्य का प्रमाण देखा था डिवाइडेड बाय ध्रुव भागार, उसमें एक रूप धरित खंड द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है, यानी अवधि ज्ञान का दूसरा भेद उतने द्रव्य तक को जानता है, उससे नीचे वाले द्रव्य को नहीं जानता, ये उसकी लोअर लिमिट है। घनलोक का भाग दिया, वो जो संख्या आई थी वो क्या है? द्रव्य है। अब उस द्रव्य को अभी ये ध्रुव भाग आ रहे, उससे भाग देने का, हाँ, तो द्वितीय विकल्प होता है, क्योंकि पूर्वोक्त जघन्य द्रव्य की अपेक्षा करके, यानी हमने लाख द्रव्य मान लिया, लाख द्रव्य की अपेक्षा करके एक दो परमाणु आदि कौन से हीन पुद्गल स्कंद के ग्रहण करने में समर्थ, ऐसे ज्ञान के निमित्त भूत अवधि ज्ञानावरण के क्षोभम का अभाव है। यह कर्मों की तरफ से बताया है कि अवधि ज्ञान का दूसरा भेद कैसा होगा, वह विशिष्ट उसका क्षोभम है ना, अवधि ज्ञानावरण का क्षोभम है। पहले में आवरण ज्यादा था, दूसरे में आवरण हट गया थोड़ा, तो कितना हट गया, तो भी वो लाख के बदले 20,000 तक को जानने लगा, परंतु ऐसा कोई दूसरा भेद नहीं होगा ज्ञान का या ज्ञानावरण का कि वो मिनिमम 90 तक जाने, मिनिमम 60,000 तक जाने, मिनिमम 50,000 तक जाने। दूसरा भेद कहाँ तक है? एकदम 20,000 तक को जानेंगे, बीच वाले तो है ही, उसको जान ही रहे, हमको मिनिमम लेवल उसकी कितनी है उसको देखना है, कम से कम कहाँ तक को जानता है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, वह अवधि ज्ञान आवरण की असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियां है, इस वर्गणा सूत्र से जाना जाता है। यदि हम दो पुद्गल परमाणु कम, तीन वाले कम, चार वाले कम ऐसा करते जाएंगे तो अनंत अनंत हो जाएगी, परंतु अवधि ज्ञानावरण की प्रकृतियां असंख्यात ही है, अनंत नहीं है। हाँ हाँ आपको क्या कहते हैं, अनंत भेद है बीच में? वो एक एक प्रदेश बढ़ता है, एक एक प्रदेश यानी एक एक परमाणु नहीं लेना, एक एक प्रदेश लोकाकाश का लेना तो असंख्याति बढ़ेंगे। प्रदेश यानी परमाणु नहीं लेना वहां पर, वो क्षेत्र में लेना है, ये हम द्रव्य की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में लेंगे तो कितने भी क्षेत्र बढ़ेगा, सुई के नोक के ऊपर, अब ये पेन के नोक के ऊपर भी असंख्यात प्रदेश है, अब ये स्पंज देखो ये भी असंख्यात प्रदेश है। द्रव्य में परमाणुओं की संख्या लेना है, वही तो बता रहे। वो एक दो परमाणु से कम नहीं होता है, आप बढ़ने की बात करें, बढ़ने कम हो गए वे। हाँ नहीं, वो दूसरा भेद वो सबको जान रहा है। पहला भेद लाख और उसके ऊपर के सभी को जान रहा है, दूसरा भेद 20,000 मिनिमम उसके और उसके ऊपर सबको जान रहा है, तो उसके वो ज्ञान के अलग अलग भेद नहीं कहेंगे उसको हम, वही तो बता रहे। 20,000 और एक तक को ही जानने वाला कोई ऐसा अलग ज्ञान है का तो नहीं है। पहले वाला जो ज्ञान है उसकी लोअर लिमिट लाख है, लाख और उसके ऊपर को सबको जान रहा है। दूसरा भेद है वो 20,000 और ऊपर को सबको जान रहा है, ऐसा कोई भेद नहीं है, ऐसा कोई भेद नहीं है, ऐसा कोई भेद नहीं है कि जो 90,000 और ऊपर को ही जानेगा। पहले भेद की लोअर लिमिट लाख थी, लोअर लिमिट बता रहे तो ऊपर सबको जानना है। दूसरा भेद कौन सा है, एकदम 20,000 तक को जानेगा। हाँ वही तो बता रहे, ज्ञानावरण की प्रकृतियां ऐसी असंख्या थी है, अनंत नहीं है। 1 लाख नहीं, ऊपर 20,000 ऑनवर्ड करो अपन, ऊपर सब। पहला क्या, लाख के ऊपर के सबको जान रहा था, दूसरा भेद 20,000 के ऊपर को सबको जान रहा है। ये पहले भी आपने प्रश्न किया था ना, उसमें भी यही कन्फ्यूजन चल रहा था कुछ। हाँ नहीं, प्रश्नोत्तर से क्लैरिटी बढ़ती है अपने, क्योंकि ये तो अवधि ज्ञानावरण के तो भेद तो असंख्यात ही है। भले वो परमाणु को अनंत को जान रहा है उसकी बात नहीं यहाँ हो रही, अवधि ज्ञानावरण के भेद जितने हो गए उतने ही अवधि ज्ञान के भेद हो गए, तो अवधि ज्ञान के भेद तो असंख्यात ही है, अनंत नहीं है। अवधि ज्ञान के भेद की बात चल रही है, एक नंबर का अवधि ज्ञान, दो नंबर का अवधि ज्ञान, तीन नंबर का अवधि ज्ञान, चार नंबर का अवधि ज्ञान, ऐसे भेद कितने हैं, असंख्यात हो गए तो उतने ही ज्ञानावरण के, यहाँ ज्ञानावरण की ओर से बता दिया उतने ही भेद है उसके। असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियां हैं, अभी ये सारे देशावधि परमावधि सर्वावधि मिलकर कितने हैं अवधि ज्ञानावरण, असंख्यात लोक प्रमाण है। इस वर्गणा सूत्र से जाना जाता है। अब ये क्षेत्र और काल को अलग रखेंगे, भाव का दूसरा विकल्प बता रहे, द्रव्य का दूसरा विकल्प देखा हमने, भाव का द्वितीय विकल्प लाने के लिए अब भाव में घटाना के बढ़ाना, क्योंकि पहले जितने को जान रहा था अभी अधिक को जानेगा, तो भाव को, भाव का द्वितीय विकल्प लाने के लिए यानी भाव की अपेक्षा अवधि ज्ञान का दूसरा विकल्प समझने के लिए, जिन भगवान ने देखा गया है स्वरूप जिसका, यानी भगवान ने जिसको जाना है ऐसा असंख्यात गुणकार देना चाहिए, विशिष्ट असंख्यात से गुणा करना चाहिए। पहले वाला भेद भी असंख्यात पर्यायों को जानता था, दूसरे वाला कितने पर्यायों को जानेगा उससे असंख्यात गुणा पर्यायों को जानेगा, यह अवधि ज्ञान का भाव की अपेक्षा दूसरा भेद होगा। अर्थात भाव का द्वितीय विकल्प प्रथम विकल्प से असंख्यात गुणा है। अभी जब हमने द्रव्य में घट गया, द्रव्य छोटा हो गया और भाव बढ़ गया असंख्यात गुणा, तो यहाँ क्या पोजीशन हो गई, क्षेत्र और काल में क्या हुआ, क्षेत्र और काल जघन्य ही रहते हैं क्योंकि यहाँ उनकी वृद्धि का अभाव है। द्रव्य की अपेक्षा अभी हमने दूसरा विकल्प देखा, फिर तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, पांचवा, असंख्यात विकल्प जाने तक क्षेत्र वही का वही रहेगा, उतना ही सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य उगाहना जितना है ना? फिर शंका, यहाँ वृद्धि का, उनकी वृद्धि का अभाव है, यह कैसे जाना जाता है, उसके लिए गाथा उद्धृत करते हैं। कालो चौन्न उड्डी कालो भजियौ ओ खेत उड्डीये उड्डीये दौ अपचय भज दौ आ खेत कालाय। ये उड्डी यानी वृद्धि, देखो इसका अर्थ मैं पढ़ती हूँ, पढ़ के बताती हूँ फिर उसको समझाऊंगी। काल की वृद्धि होने पर द्रव्यादि चारों की वृद्धि होती है। जब काल में वृद्धि होगी, हमने देखा था ना, द्रव्य की अपेक्षा भेद होंगे, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा हमने देखे थे। द्रव्य के असंख्यात भेद हो जाएंगे तब क्षेत्र में एक की वृद्धि होगी, क्षेत्र के असंख्यात भेद हो जाएंगे तब काल की एक की वृद्धि होगी, और भाव तो ये वृद्धि होते हैं, वो द्रव्य और भाव समान वो वृद्धि होती रहती। तो जब काल, देखो जब द्रव्य की वृद्धि होगी तो क्षेत्र और काल वृद्धि होगी, ऐसी बात नहीं है, परंतु जब काल की वृद्धि होती है उसका अर्थ है ये क्षेत्र की वृद्धि है ही है, द्रव्य की वृद्धि है ही है, भाव की वृद्धि भी है ही है। नहीं, वो उसमें वृद्धि की अपेक्षा द्रव्य और भाव की वृद्धि समानता से चलेगी, उसका दूसरा विकल्प और ये भाव भी असंख्यात गुणा जानेगा। तो जब काल की वृद्धि होती है यानी सब में वृद्धि है ही है, क्षेत्र में वृद्धि होती है तो द्रव्य और भाव में है ही है, काल की भजी द्रव्य यानी हो सकता है ना कि ये 10 हो गए और 11वीं की इसमें वृद्धि है तो उस समय काल की वृद्धि है, उसके लिए भजी द्रव्य यानी ऑप्शनल है। क्षेत्र की वृद्धि होती है, अभी हम हरेक के लिए पांच पांच की संख्या देखेंगे। द्रव्य के जब पांच भेद हो जाते हैं तब क्षेत्र का एक से लेकर दूसरा भेद शुरू हो जाता है, यानी पांचवे से के बाद छठा शुरू हुआ ना, तो जब द्रव्य का छठा विकल्प आया तब काल का, क्षेत्र का दूसरा विकल्प आया, अब ये दूसरा तीसरा करके इसके पांच विकल्प पूरे हो गए, इसके पांच पूरे होने में इससे 25 हो गए, तो यहाँ इसका 25वां पूरा हुआ। अब यहाँ इसका 26वां है, इसका छठा है, तब काल का दूसरा आया, और भाव के भी वहाँ कुछ 25-26 वो हो ही गए थे। तो जब क्षेत्र काल का बदलता है तो निश्चित ही सबका बदलता है। अभी जब क्षेत्र का बदलता है, अभी एक क्षेत्र का बदला है, चार से पांच हुआ, तो काल तो वही का वही रहा था, पहले वाला ही रहा था, परंतु द्रव्य में वृद्धि हुई थी, क्योंकि द्रव्य में हर बार पांच पांच बार की वृद्धि होगी तभी तो क्षेत्र बदलेगा। जब क्षेत्र की वृद्धि होती है तो द्रव्य और भाव की तो नियम से वृद्धि होती ही होती, परंतु काल की वृद्धि होवे भी और नहीं भी होवे, क्योंकि जब क्षेत्र चार से पांच बना था तो काल की वृद्धि नहीं हुई थी, परंतु जब क्षेत्र पांच से छह हुआ था तब काल की एक से दो हो गई। तो अभी इसका अर्थ ख्याल में आएगा। देखो, काल की वृद्धि होने पर द्रव्यादि चारों की वृद्धि होती है, ख्याल में है ये बात। क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल वृद्धि भजनीय है, भजनीय है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ऑप्शनल है, यानी कभी होती है कभी नहीं भी होती है। ये कभी होती है हमने अभी देखा था, अर्थात वो होती भी और नहीं भी होती। और द्रव्य और भाव की वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल की वृद्धि भजनीय है, हमने देखा था द्रव्य की इतने असंख्यात बार वृद्धि होती है तब जाके एक बार क्षेत्र की वृद्धि होती है। अभी हमने पांच माने थे, तो जब द्रव्य की पांच बार हुई तब तो क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई थी, जब पांचवे से छठे बार हुई तब क्षेत्र में एक की वृद्धि हुई। तो इसलिए द्रव्य और भाव की वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल की वृद्धि भजनीय है, इस वर्गणा सूत्र से जाना जाता है। ये कैसे जाना जाता है ये पूछा था, क्या पूछा था अपना प्रश्न क्या था, कि जो भाव का द्वितीय विकल्प होता है, द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है, तो द्रव्य और क्षेत्र और काल वही के वही जगह नहीं रहते, तो ये इस बात को कहाँ से जाना, तो इस सूत्र से जाना। हाँ, द्रव्य तो ध्रुव भागहार से छोटा छोटा होता जाएगा और भाव असंख्यात गुना होता जाएगा, दोनों एक साथ लिए। हाँ, वो जिनेंद्र भगवान ने जानी हुई असंख्यात, और वहां हमने अनंत लिया था, भागहार में हमने ध्रुव भागहार अनंत का लिया था, और ये यथा योग्य जिन भगवान ने जाने हुए यथा योग्य असंख्यात से गुणा करना, उसमें कोई विशिष्ट असंख्यात नहीं बताया है, क्योंकि वैसा उपदेश प्राप्त नहीं है, इसलिए जो जिनेंद्र भगवान ने यथा योग्य जाना है देखा है उसको वहां गुणकार रूप से लेना है भावों की वृद्धि में। अब पढ़ेंगे आगे का, फिर अभी नहीं समझने वाला है, फिर कल दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक बार तो पढ़ लेते। पश्चात बहुरूप धरित खंडों को छोड़कर एक रूप धरित द्वितीय विकल्प रूप द्रव्य को, अभी क्या कहते हैं, अपना पहले वाला एग्जाम्पल लेना है, पांच का विरलन किया था और लाख को समखंड करके दिया था, तो एक रूप धरित यानी एक संख्या के ऊपर कितने थे, 20,000, एक को छोड़कर जो बाकी चार है उसको हम बहुरूप कहेंगे, एक भाग और बहुभाग कहते ना, तो रिमेनिंग चार है वो बहुरा। अभी हर एक के ऊपर 20-20 है, नहीं वो 80,000 को छोड़ा, यानी बहुरूप धरित खंडों को छोड़कर एक रूप धरित द्वितीय विकल्प रूप द्रव्य को, पहले हमने लाख माना था अपनी भाषा में, उसको ध्रुव भागहार से भाग दिया पांच से, तो 20,000 आए, वो द्वितीय विकल्प का द्रव्य है, उसको फिर उसी भागहार से भाग देना है, पांच से ही भाग देंगे तो 4,000 आएंगे। अभी इन्होंने वो विरलन करके वगैरह वगैरह बताया, अब ये जो द्वितीय विकल्प का द्रव्य है उसको क्या करना है, अवस्थित भागहार के प्रत्येक रूप के ऊपर, यानी फिर दोबारा अवस्थित भागहार को विरलन कर दो, यानी फिर वो 20,000 आया था, एक रूप धरित कितना, 20,000, बहुरूप धरित 80,000, 80,000 को छोड़ दो, 20,000 को क्या करना, पांच जो ध्रुव भागहार है उसको फिर विरलन कर दो, एक 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 करो, अब 20,000 के समखंड करके विभाजित करो, तो 4,000 आ जाएंगे। तो प्रत्येक रूप के ऊपर समखंड करके देने पर उनमें एक खंड तृतीय विकल्प रूप द्रव्य होता है, 20,000 को फिर पांच में डिवाइड कर दो, फिर एक एक के ऊपर 4,000 आ गए, तो ये तृतीय विकल्प होगा। तीसरे नंबर का अवधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा वाला, तो ये इतने द्रव्य तक को कम से कम जानेगा। अब भाव विकल्प की बात कर रहे हैं, द्रव्य और भाव साथ साथ बढ़ रहे हैं, द्वितीय भाव विकल्प को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर तृतीय भाव विकल्प होता है। ये तीसरे नंबर का द्रव्य विकल्प और भाव विकल्प चल रहा है। अभी हमने लाख, फिर 20,000, फिर 4,000 देखा। भाव में असंख्यात गुणा हो गया, बराबर। अब ये तीसरे नंबर का द्रव्य और भाव का विकल्प चल रहा है, तब क्या हो रहा है? क्षेत्र और काल जगन्य ही रहते हैं। चौथा, पांचवा, दसवा, पचासवा, सौवा, क्षेत्र और काल जगन्य ही रहेंगे। शेष खंडों को छोड़ करके फिर वही का वही झमेला, यानी एक खंड कौन सा है 4,000 और शेष खंड कितने हैं 16,000, उसको छोड़ करके एक रूपधरित तृतीय विकल्प रूप द्रव्य को अवस्थित विरलना से विरलित कर। अवस्थित विरलना यानी पांच बार पांच को विरलित कर समखंड कर देने पर अभी 4,000 के पांच समखंड करना है। फिर चतुर्थ विकल्प रूप द्रव्य होता है, कितना आएगा? 85, 800 आ जाएगी ना। तृतीय भाव विकल्प को, अभी भाव विकल्प भी बढ़ेगा, द्रव्य और भाव साथ साथ बढ़ रहे, उसको तत्प्रायोग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर चतुर्थ भाव विकल्प होता है। वो यथा योग्य असंख्यात का जो वहां गुणकार होगा, जो जिनेंद्र भगवान ने देखा है। इस प्रकार अभ्रांत होकर, बिना डर के, यानी इसी प्रोपोर्शन में ऐसे ही भाग देते 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 पंचम, छठा, सातवां आदि विकल्प होंगे। कितने बार? जब क्षेत्र और काल वही का वही जघन्य रहेगा और द्रव्य और भाव में इतने विकल्प होंगे, तो ऐसे कितने विकल्प जाएंगे? अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों को उत्पन्न करना चाहिए। अंगुल में जितने प्रदेशों की संख्या है, उतनी बार द्रव्य के और भाव के विकल्प होंगे। अंगुल के असंख्यात विभाग, उतने भेद होंगे कि द्रव्य की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा। अभी क्षेत्र वही का वही जगन्य पड़ा है, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जगन्य उगाना जितने क्षेत्र तक को जान रहे, और द्रव्य में इतने इतने सूक्ष्म स्कंदों को जान रहा है, भाव में इतने अधिक अधिक असंख्यात असंख्यात पर्यायों को जान रहा है। क्षेत्र और काल वही का वही है। तत्पश्चात यानी इतने वो अंगुल के असंख्यात वे भाग बार इतने द्रव्य की और भाव की जो चेंजेस होते हैं, विकल्प यानी भेद होते हैं, उसके बाद जघन्य क्षेत्र के ऊपर एक आकाश प्रदेश बढ़ाना चाहिए। द्रव्य की प्ररूपणा में हमने अनंत अनंत से भाग देते थे, बिल्कुल लाख से हम 20,000 तक आए, परंतु क्षेत्र में जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य उगाना देखी थी, घनांगुल का असंख्यात भाग, उसमें खाली एक प्रदेश बढ़ाना, क्षेत्र की जो अधिक क्षेत्र को जानने की कैपेसिटी है वो एक एक प्रदेश से बढ़ेगी, उतने उसमें विकल्प होंगे। इस प्रकार बढ़ाने पर क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है, परंतु काल जगन्य ही रहता है। अभी और एक प्रदेश बढ़ने के लिए फिर वो पहले वाला झमेला, फिर पूरा अंगुल के असंख्यातवे भाग बार करना। अभी लोक प्रमाण की बात मत उठाओ, अभी सूक्ष्म निगोद लव उसमें से अभी एक प्रदेश बाहर निकले हैं। अब एकदम एंड देखते हो ना। समय हो गया, अभी हम काल जगन नहीं रहता है यहाँ तक पड़ा, पश्चात क्या होता है वो कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होलो। अश्विन भाई।